ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम स्कंद 8 अध्याय 22 और श्लोक संख्या 28-28। एष दानव दैत्यानां अग्रणी कीर्तिवर्धन अजय सीद अजया माया सीदन भी न मुह्यति। एष दानव दैत्यानां अग्रणी कीर्तिवर्धन अजय सीद अजया माया सीदन्नपि न मुह्यते। एष दानव दैत्यानां अग्रणी कीर्तिवर्धनः अजय सीद अजया माया सीदन्नपि न मुह्यते। शब्दार्थ अनुवाद एवं तात्पर्य जगद्गुरु श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की एषः यह बलि महाराज दानव दैत्यानां असुरों तथा नास्तिकों में अग्रणी अग्रगण्य भक्त कीर्तिवर्धन अत्यंत विख्यात अजय सीता पहले ही बाजी मार चुका है। अजयाम अजय मायाम माया को सीदन सारे ऐश्वर्य से विहीन होकर अपि यद्यपि न नहीं मुह्यते मोहग्रस्त होता है। अनुवाद सुनिए। बलि महाराज असुरों एवं नास्तिकों में सर्वाधिक विख्यात हो गए हैं क्योंकि अपने सारे ऐश्वर्य से वंचित होकर भी वे अपनी भक्ति में अचल हैं। तात्पर्य, इस श्लोक में सीदन अपि न मुह्यति पद अत्यंत महत्वपूर्ण है। कभी कभी भक्ति करते हुए भक्त संकट में फंस जाता है। संकट में हर व्यक्ति शोक करता है और दुखी होता है, किंतु भक्त भगवत कृपा से बुरी से बुरी स्थिति में भी यह समझ सकता है कि भगवान उसकी कठिन परीक्षा ले रहे हैं। बलि महाराज ऐसी सारी परीक्षाओं में उत्तीर्ण रहे, जैसा कि अगले श्लोक में प्रकट हुआ है। ये तात्पर्य में लिखा हुआ है, कभी कभी भक्ति करते हुए भक्त संकट में फंस जाता है। इंग्लिश में प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि ये भगवान की कृपा से जो है भक्तों के जीवन में जो है कष्ट दिया जाता है। हिंदी में ऐसे लिखा है कि भक्त संकट में फंस जाते हैं, लेकिन ये वास्तव में भगवान की कृपा से भक्त संकट में फंसते हैं। हरे कृष्णा। तो आप सभी भक्तों का स्वागत है आज के इस प्रातःकालीन श्रीमद्भागवत कक्षा में। और शुरू करने से पहले मैं आप सब भक्तों के आशीर्वाद की याचना करता हूँ कि इस महत्वपूर्ण प्रसंग पर कुछ बोल सकूँ अपने शुद्धिकरण के लिए। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं कि ये बलि महाराज का प्रसंग बहुत ही रोचक और बहुत ही शिक्षाप्रद है, और हम सब जानते हैं कि किस तरह से इस ये अध्याय का नाम है बलि महाराज द्वारा आत्मसमर्पण। तो किस तरह से बलि महाराज ने भगवान को वचन दिया था और वो वचन पूरा नहीं कर पाए, जिसके कारण भगवान ने क्या किया, उनको वरुण पास से बांध दिया। और ये एक ऐसा दृश्य है कि अभी बलि महाराज जो है सबके बीच में, वहाँ पे स्वयं भगवान उपस्थित हैं, प्रहलाद महाराज हैं, ब्रह्मा जी हैं, और उनके जितने भी सैनिक हैं, उनके गुरु हैं, जितने ब्राह्मण हैं, सबके सामने जो है भगवान ने उनको बांधा हुआ है। और फिर इस तरह से जब बलि महाराज को बांधा तब वहाँ पर कौन प्रकट हुए, प्रहलाद महाराज। और प्रहलाद महाराज जो है बलि महाराज के दादा हैं, ग्रैंड फादर हैं। तो जब प्रहलाद महाराज वहाँ पर आए तो उन्होंने जो है सो सबसे पहले क्या किया, भगवान का धन्यवाद किया उन्होंने बताया कि हे भगवान, आपका ही सब कुछ दिया हुआ है। ये बलि महाराज के पास जो भी कुछ था सब आपने ही दिया था, और आज आपने इनसे सब कुछ हर लिया है। और फिर वो बलि महाराज को डांटने लग गए, प्रहलाद महाराज। और फिर भगवान से रिक्वेस्ट किए, भगवान से प्रार्थना किए कि जो आप जो है कृपया करके बलि महाराज को छोड़ दें। फिर प्रहलाद महाराज को बोलने के बाद ब्रह्मा जी जो है वहाँ पर, वो भी भगवान से प्रार्थना करने लगे। लेकिन जब ब्रह्मा जी प्रार्थना करने ही वाले थे कि उससे पहले जो है बलि महाराज की जो पत्नी है विंध्यावली, वो वहाँ पर आई और वो जो है भगवान से प्रार्थना करने लगी। और सबसे पहले तो उन्होंने बलि महाराज को डांटा। उन्होंने बोला कि तुम क्या सोचते हो, जब जैसे उन्होंने भगवान को प्रॉमिस किया था 3 पग जमीन का, तो वो पूरा कर नहीं पाए। तो फिर बलि महाराज कह रहे थे कि आप 3रा पग जो है मेरे मस्तक पे रखो। तो उन्होंने बोला कि आप क्या सोचते हो कि ये जो शरीर है ये आपका है, ये शरीर भी हमारा नहीं है, सब कुछ जो है भगवान का है। तो इस तरह से फिर विंध्यावली भी भगवान से प्रार्थना करती हैं कि आप कृपया करके जो है इस बलि महाराज को छोड़ दीजिए। तो फिर उनके प्रार्थना के बाद जो है ब्रह्मा जी प्रार्थना शुरू करते हैं, और ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे भगवान, आपको तो प्रसन्न करना बहुत ही आसान है। जैसे कि भगवद्गीता में कहा गया है, पत्रम पुष्पम फलम त्वम यो मे भक्त्या परिचयति। भगवान को प्रसन्न करने के लिए कोई भी जो है मेटेरियल क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए, कोई भी प्रसन्न कर सकता है। कैसे? कोई भी जो है भगवान को अगर भक्ति से, अगर स्नेहपूर्वक अगर भगवान को कुछ भी अर्पण करते हैं, पत्र पुष्प जल, तो क्या है कि भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं कि बलि महाराज ने तो आपको सब कुछ दे दिया। ये जो श्लोक है पत्रम पुष्पम फलम त्वम, इसके टीका में आचार्यगण बताते हैं कि ये जो पत्र पुष्प है ये सिंगुलर में है। सिंगुलर मतलब क्या हुआ कि अगर भगवान को कोई एक भी पत्ता दे दे, तुलसी का पत्ता, एक भी फल दे दे, एक गिलास पानी दे दे, ऐसा नहीं कि बहुत सारे फल चाहिए। ये सब जो है अगर थोड़ी सी भी मात्रा में अगर कोई भगवान को दे दे तो भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं कि बलि महाराज ने भगवान को सब कुछ दे दिया। सब कुछ देने का क्या मतलब है कि इस पूरे पृथ्वी में जितने भी पेड़ हैं उसके जितने भी फल हैं सब भगवान को दे दिया। ऐसे आचार्यगण बताते हैं टीका में, जितने भी पौधे हैं उसमें जितने फल हैं, जितने भी जल है, सब कुछ पूरा पृथ्वी दे दिया। और तो ब्रह्मा जी जो है भगवान को एक इवन मेटेरियल दृष्टि से भी, मतलब उस गणना से भी इंगित कर रहे हैं कि आपको तो इन्होंने जितना भी कुछ था इसके पास सब दे दिया। और ऐसा नहीं, अभी पीछे के श्लोक में आया है, प्रभुपाद जी लिखते हैं विदाउट डुप्लीसिटी, और ऐसा नहीं कि गरज में दिया। जैसे इस श्लोक में है कि अगर भक्ति भाव से अगर हम भगवान को अर्पित करते हैं तब भगवान प्रसन्न होते हैं, उसी तरह से बलि महाराज ने मतलब पूरा प्रेम पूर्वक भगवान को सब कुछ अर्पित कर दिया। तो ब्रह्मा जी कहते हैं अब आप इसको क्यों इतना कष्ट दे रहे हो, आपको जितना भी कष्ट देना था आपने इसको दे दिया, अब आप कृपया करके इसे छोड़ दो। तो वास्तव में हम देखते हैं कि ब्रह्मा जी जो है इस चीज़ को समझ नहीं पा रहे कि भगवान एक्चुअली यहाँ पर क्या कर रहे हैं। इसी अध्याय में पीछे श्लोक में आता है कि एक श्लोक में सुखदेव गोस्वामी बोलते हैं कि जब भगवान कुछ भी करते हैं तो उसके कई कारण होते हैं। हम सोच सकते हैं कोई एक कारण है, दो कारण, लेकिन भगवान के कोई भी लीला के पीछे बहुत सारे उद्देश्य होते हैं जो भगवान उसको पूरा करते हैं, तो एक साधारण बुद्धि से नहीं समझा जा सकता। तो ब्रह्मा जी यहाँ पर बिल्कुल विमोहित हो गए कि ये भगवान क्या कर रहे हैं। और ऐसे हम और भी देखते हैं, ब्रह्मा जी जो 10वें स्कंद में वर्णन आता है किस तरह से एक बार और वो भगवान से विमोहित हो गए थे, जब उन्होंने देखा कि ग्वाल बाल जो है भगवान के ही प्लेट से खा रहे हैं, और इस तरह का जब उन्होंने वो लीला देखा उनको लगा ये कैसे भगवान हो सकते हैं। तो उस समय भी ब्रह्मा जी जो है विमोहित हो, और यहाँ पर भी ब्रह्मा जी समझ नहीं पा रहे हैं कि भगवान जो है इनको क्यों इतना कष्ट दे रहे। लेकिन बलि महाराज जो है वो सब कुछ समझ रहे कि भगवान जो है उनके साथ क्या कर रहे हैं। यहाँ पर जैसे तात्पर्य में प्रभुपाद जी लिखते हैं, किंतु भक्त भगवत कृपा से बुरी स्थिति में भी यह समझ सकता है। बलि महाराज की ऐसी स्थिति थी लेकिन फिर भी बलि महाराज सब समझ रहे थे कि भगवान उनके साथ क्या कर रहे हैं, और ये समझने के कारण ही भगवान के द्वारा जितनी भी उनको प्रताड़ना मिली वो सब कुछ जो है टॉलरेट कर रहे थे, हर स्थिति को जो है उन्होंने एक्सेप्ट किया। हम देख सकते हैं बलि महाराज की क्या स्थिति थी। बलि महाराज जो है तीनों लोगों के राजा थे, है कि नहीं, पूरे पृथ्वी का, और वो यज्ञ कर रहे थे इंद्र का पोस्ट प्राप्त करने के लिए। उसके बाद उनके पास इतने सारे सैनिक थे, उनके ऊपर उनके गुरु की कृपा थी, सब कुछ अच्छा चल रहा था उनके जीवन में। लेकिन अचानक क्या हुआ, वामन देव आते हैं और उनका सब कुछ हर लेते हैं। तो एकदम हम देखते हैं कितना ऊपर, टॉप से जो है बिल्कुल बॉटम पे आ गए, कहाँ पे थे और बिल्कुल कहाँ पर आ गए। और उसी तरह से, लेकिन फिर भी जो है उन्होंने क्या किया, इन सब चीज़ों को जो है उन्होंने सहा, भगवान की कृपा को समझते हुए। जय श्री श्री राधा राधिका भगवान की, श्री श्री कृष्ण बलराम की, श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की, श्री गौर निताय भगवान की, निताय गौर ब्रह्म की। तो इस सब स्थिति को जानते हुए भी बलि महाराज ने जो है पूरा का पूरा टॉलरेट किया, और वो समझ रहे थे कि निश्चित रूप से भगवान की कोई योजना है मेरे लिए, तो इन सब स्थिति को उन्होंने स्वीकार किया। तो उसके बाद जो है ब्रह्मा जी के प्रार्थना करने के बाद जो है भगवान ने बोलना शुरू किया, और भगवान आज 28 नंबर श्लोक है, लगभग 24 नंबर श्लोक से भगवान बोलते हैं, और पीछे 3-4 श्लोक में भगवान प्रार्थना करते, भगवान बोलते हैं कि ये वास्तव में जो बद्ध जीव हैं उनको जो ये भौतिक ऐश्वर्य है ये जो हर किसी को भ्रमित करता है। अगर ऊंचे कुल में हमारा जन्म हो, अच्छी शिक्षा हो, सुंदरता हो, तो इस तरह की जो चीज़ें हैं हर किसी को जीवन में भ्रमित करता है। लेकिन अगर ये सब चीज़ें अगर किसी शुद्ध भक्त के जीवन में आता है तो भक्त जो है उससे विचलित नहीं होता, उससे प्रभावित नहीं होता। और उसके बाद जो है ये आज का श्लोक है 28 नंबर, इस श्लोक पे हम चर्चा करेंगे। इसमें बताया गया है कि एस दानव दैत्यानाम, कि एस का क्या मतलब है, बलि महाराज। ये जो बलि महाराज है ये क्या है, दानव और दैत्यानाम। जो दैत्य है वो कौन है, दीदी के पुत्र हैं और कश्यप मुनि के भी पुत्र हैं, कश्यप मुनि की पत्नी है दीदी, उनके पुत्र है जिनको दैत्य बोलते हैं, और कश्यप मुनि की एक और पत्नी है दानु, उनके जो पुत्र होते हैं उनको दानव बोलते हैं। तो जितने भी दानव हैं, जितने भी दैत्य हैं, उसमें जो ऐसा मतलब ये बलि महाराज क्या है, अग्रणी कीर्ति वर्धना, उस समय जो है सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है। बलि महाराज इज द मोस्ट फेमस एमंग ऑल दानव एंड दैत्य, जितने भी दानव एंड दैत्य हैं उसमें बलि महाराज सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध हैं। क्यों प्रसिद्ध हैं, कह रहे हैं कि अजय सीध अजया माया, क्योंकि उनका जो है उनके पास जितनी भी भौतिक सुख सुविधा थी उनसे जो है सब कुछ हर लिया गया है। अरे ऐसे कैसे हो सकता है, अगर किसी व्यक्ति का जितनी भी सुख सुविधा है वो हर लिया जाए तो वो उसमें क्या फेमस की क्या बात है। हम देखते हैं भौतिक जगत में अगर कोई व्यक्ति बहुत ही फेमस हो, बहुत ही धनी हो, उसकी प्रसिद्धि पूरे विश्व में हो, अगर वो अचानक जो है वो सब कुछ खो दे या उससे सब कुछ छीन लिया जाए तो इससे तो उसका बहुत बड़ा इंसल्ट है, इसमें फेमस की क्या बात है कि नहीं। अगर कोई बहुत बड़ा, जितना बड़ा व्यक्ति है भौतिक जगत में और अगर उसको अपमानित किया जाए तो उसका उतना बड़ा इंसल्ट है। यह हम देख रहे हैं बलि महाराज के पास सब कुछ है, इनको इनके लोगों के सामने ही सब कुछ छीन के इनको बांध दिया गया है, इसमें क्या इनकी प्रसिद्धि है, ये भगवान जो है कह रहे हैं। तो इसमें क्या प्रसिद्धि है, क्यों प्रसिद्धि है इनकी, वो कह रहे हैं सीदन अपी न मुहयति, कि इतना कुछ छीनने के बाद भी, इतना कुछ प्रताड़ना के बाद भी बलि महाराज जो क्या है, ही वाज फिक्स्ड इन हिज डिवोशनल सर्विस, वो जो है भक्ति में बिल्कुल स्थित हैं, बिल्कुल जो है फिक्स हैं। तो ये जो है उनकी महानता है कि नहीं। इसलिए जो है बलि महाराज जितने भी दानव और दैत्य हैं उस सब में जो है अग्रणी, सब में जो है सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है। इतना कुछ छीनने के बाद भी जो है बलि महाराज अपने सेवा से जो है विमोहित नहीं हुए, वो जो है बिल्कुल जो है अपनी सेवा में फिक्स हैं, ये उनकी महानता है। इसलिए भगवान जो है आज के श्लोक में बलि महाराज का गुणगान कर रहे हैं। और हम देखते हैं वास्तव में कि इस भौतिक जगत में जैसे बताया गया है कि पदम पदम जत विपदम, ये जो भौतिक जगत है उसमें अपने आप कष्ट आते हैं। जैसे कि एक जंगल है, जंगल में कोई आग नहीं लगाता, अपने आप जो है वहाँ पर आग लगती है। उसी तरह से हम नहीं भी चाहते हुए भी इस भौतिक जगत में आप देखेंगे हर जीव जो है कष्ट में, लेकिन इस कष्ट से हम कैसे मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं, जब हम भगवान की शरण लेते हैं। और भगवान की शरण क्या है, भगवान के जो प्रतिनिधि हैं गुरु, उनके शरण के माध्यम से। लेकिन हम देखते हैं यहाँ पर बलि महाराज का इतना बड़ा स्थिति, इतना बड़ा सब कुछ था उनके पास, लेकिन फिर भी इसके आगे का श्लोक में कहते हैं, आप पढ़ेंगे बलि महाराज की क्या स्थिति होगी। बलि महाराज यद्यपि धन विहीन, उनका जितना भी धन था सब कुछ छीन लिया गया, अपने पद से च्युत उनको अपने पद से हटना पड़ा। अपने शत्रुओं द्वारा पराजित तथा बंदी बनाए गए, जो देवतागण थे वो उनके शत्रु थे, उनके द्वारा पराजित हुए, बंदी बनाए गए। अपने कुटुंबियों तथा मित्रों द्वारा भर्सित हुए और अपने जितने भी रिलेटिव थे उनके द्वारा जो उनको इंसल्ट सहना पड़ा, और उसके बाद इस तरह से अलग अलग अनेकों जो है उनके गुरु के द्वारा उनको साप मिला, कई सारे कष्ट का सामना करना पड़ा। लेकिन फिर भी जो है बलि महाराज अपने वचन में बिल्कुल दृढ़ रहे। इनफैक्ट भगवान कहते हैं कि मैंने बलि महाराज को छला है, मैंने उसको बोला कि आपसे तीन पग जमीन चाहिए, पर मैंने बलि महाराज के साथ चीटिंग किया। लेकिन बलि महाराज ने क्या किया, वो जो है अपने वचनों पे बिल्कुल फिक्स रहा, वो जो है अंत तक वो जो है अपना सब कुछ देना चाहा और वो हर स्थिति में अपने वचन को पूरा करना चाहा। तो वास्तव में जो है बलि महाराज ने चीटिंग, बलि महाराज के साथ मैंने चीटिंग किया, ये भगवान जो है बलि महाराज को कह रहे हैं और इस तरह से कह के उनका गुणगान कर रहे हैं। तो हम देखते हैं कि इसी तरह से हमारे को भी ये एक भक्त के जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत है कि कोई भी जीवन में चाहे कैसा भी उतार चढ़ाव आए, जैसे यहाँ पे हम देख रहे हैं बलि महाराज के साथ, हमें जो है अपनी सेवा में, हमें अपनी साधना में और हमें अपनी भक्ति में बिल्कुल फिक्स होना चाहिए, बिल्कुल फिक्स। यहाँ पर लेकिन हमारे साथ तो बिल्कुल उल्टा होता है। जैसे हम देखते हैं कि अगर हमारे को अगर कोई टेम्परेचर भी ज़्यादा हो जाए, सर्दी ज़्यादा हो, गर्मी ज़्यादा हो, हम उसी से विचलित हो जाते हैं। अगर प्रसाद टाइम पे ना मिले तो उसी से विचलित हो जाते हैं। घर में कुछ समस्या आ जाए, बिजनेस में कुछ समस्या आ जाए, आजकल GST की वजह से कई लोगों को प्रॉब्लम है। तो संसार के नियम जो है उतल पुतल होते रहते हैं हर जगह कहीं ना कहीं। ये जो है भौतिक प्रकृति का स्वभाव है, ये नेचर है कि पदम पदम यत विपदम, हर कदम पर जो है भौतिक जगत में खतरा है। तो एक भक्त को क्या चाहिए, इस चीज़ को समझते हुए कि अपने जो है भक्ति में जो है स्थित रहे, फिक्स रहे, इस चीज़ों से जो है हमें घबराना बिल्कुल भी नहीं चाहिए। और उसके बाद जो है प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं कि कभी कभी भक्ति करते हुए भक्त जो है संकट में फंस जाता है कि नहीं। जैसे कि जो जब भी हम सोचते हैं कि हम जनरली भक्ति में कौन आते हैं, भगवद गीता में बताया गया अर्थो अर्थार्थ जिज्ञासु ज्ञानी च भर्तर सेवा, चार प्रकार के लोग जो है भक्ति में आते हैं, और सबसे ज़्यादा वो लोग जो दुखी होते हैं, दुखी होकर जो है भक्ति में आते हैं, भगवान के शरण में आते हैं सबसे ज़्यादा। तो लेकिन यहाँ पर और हम ये भी सोचते हैं कि यहाँ पर आने के बाद जो है भक्ति में जुड़ने के बाद जो है वास्तव में असली सुख शांति को प्राप्त करेंगे, और ये भी हम सुनते हैं कि चैंट एंड बी हैप्पी है कि नहीं, भगवान का कीर्तन करो, भगवान का नाम लो और हम खुश हो जाएंगे। लेकिन हम देखते हैं कि जब हम आते हैं भक्ति में, अगर उसके बाद भी अगर हमारे जीवन में कोई समस्या आती है तो हम जो है उससे बहुत ही विचलित हो जाते हैं। हमें लगता है कि हम जो है दुखी से बचने के लिए जो है हम जो है भक्ति में आए हैं, पर यहाँ पर भी आकर जो है हमारे को दुख क्यों मिल रहा है, तो इसका कारण जो है हम समझ नहीं पाते। आप देखेंगे कि पूरे इतिहास में आपने किसी भी पूरे श्रीमद् भागवतम में जितने भी प्रसंग हैं, जितने भी करेक्टर हैं, आप देखेंगे हर किसी के जीवन में कभी भी आपने ऐसा शांति नहीं देखा होगा। जैसे कि भगवान श्री कृष्ण जो है जब ब्रज में आते हैं वृंदावन में, तो उनके जो है प्रकट होते ही जो है वृंदावन में जो है मुश्किल शुरू हो जाती है। जब वो गोकुल में थे, जब उन्होंने जन्म लिया, तो जब 6 दिन के थे तभी पूतना का अटैक होता है, फिर तृणावर अघासुर बकासुर। इस तरह से हम देखते हैं कि अलग अलग समय पर जो है कितने असुरगण जो है वृंदावन में ब्रजवासी को जो है परेशान करते हैं, और उसके बाद से जब भगवान द्वारका जाते हैं तो वहाँ पर भी फिर कुरुक्षेत्र का युद्ध होता है। तो जहाँ जहाँ भी भगवान जाते हैं और या जो जो भक्त भगवान के संपर्क में है, हम देखते हैं किसी का भी जीवन जो है ऐसे देखने में शांतिपूर्वक नहीं लगता है। तो वास्तव में जो है ये जो शांति का मार्ग है वो किसका है, वो ज्ञानी का है और योगी का है। जो ज्ञानी जन जो है ये आध्यात्मिकता को अपनाते हैं अपने जीवन में शांति के लिए, जो योगी है वो अपने जीवन में शांति चाहते हैं तो वो आध्यात्मिकता को अपनाते हैं। लेकिन जो भक्त लोग होते हैं उनका सिर्फ ये पर्पस नहीं होता है कि भक्ति में आके जो है हमें शांति मिल जाए, और उसके बाद आप देखेंगे कि लेकिन उतने कष्टों में भी ब्रजवासी की क्या खासियत थी कि वो हर स्थिति में भगवान के ऊपर जो निर्भर रहते थे, उन्हें पूरा विश्वास था कि चाहे कैसी भी स्थिति हो भगवान जो है हर स्थिति में हमारी रक्षा करेंगे। उसके बाद जो है हम देखते हैं पांडव के जीवन में श्रीमद् भागवत के पहले स्कंद में जब भीष्म पितामह जब बाणों की सैया पे लेटे रहते हैं तो उन देखने के लिए पूरे ब्रह्मांड में जितने भी ऋषि मुनि हैं सब आते हैं वहाँ पर, और उसके बाद पांडव भी वहाँ पर होते हैं, स्वयं भगवान श्री कृष्ण होते हैं। तो जब वो लोग भीष्म पितामह से मिलने आते हैं तो भीष्म पितामह जो है पांडवों को देखकर बोलते हैं कि इन पांडवों के जीवन में इतना कष्ट क्यों आया। तो वो उसके ऊपर जो है विचार करते हैं भीष्म पितामह और बोलते हैं जब ये पांडव बिल्कुल बच्चा था तभी इसका जो पिताजी है इन्होंने अपने शरीर छोड़ दिया, और उसके बाद जो है इनकी जो माता है कुंती वो जो है विधवा हो गई और उनको भी पूरा जीवन जो है अलग अलग तरह के कष्ट झेलना पड़ा। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि ये जो है पांडव के जीवन में इतना कष्ट क्यों मिला जब स्वयं भगवान उनके साथ थे, पांचों पांडव खुद अपने आप में इतना यशस्वी था, तो उनके जीवन में इतना कष्ट क्यों मिला। तो भीष्म पितामह कहते हैं कि हो सकता है कि ये सब जो है किसकी वजह से, ये जो है काल के प्रभाव से जो है हर किसी को जो है इन चीज़ों का सामना करना पड़ता है। लेकिन फिर भीष्म पितामह कहते हैं कि जो जहाँ पर स्वयं महाराज युधिष्ठिर उपस्थित हो जो कि धर्मराज हैं, धर्म का हर स्थिति में पालन करते हैं, भीष्म और भीम अर्जुन इतने पराक्रम हैं, उनके साथ स्वयं भगवान हैं, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि इनके ऊपर जो है काल का प्रभाव हो। तो फिर भीष्म पितामह कहते हैं कि नहीं, ये सब जो भी उनको जीवन में कष्ट मिल रहा है पांडव को वो किसके कारण है, वो भगवान की इच्छा के कारण है, और ये भगवान की इच्छा है जिस वजह से इनको कष्ट मिल रहा है, और कोई कारण जो है इनके जीवन में कष्ट का नहीं हो सकता। तो उस तरह से हम देखते हैं, और जैसे इसी सातवें स्कंद में देखते हैं प्रहलाद महाराज, उनके जीवन में कितना कष्ट है, उनकी क्या दोष था, वो बचपन से जो है माँ के गर्भ से ही जो है वो भगवान के शुद्ध भक्त थे, महाभागवत थे, तो और हर स्थिति में जो है भगवान का स्मरण करते थे, तो उनके जीवन में इतना कष्ट क्यों आया, कई बार ये प्रश्न उठता है। तो वास्तव में ये सब जो है किसकी इच्छा से है, भगवान की इच्छा से, और हम देखते हैं चाहे उनके जीवन में जितना भी कष्ट आया हो, ये जितने भी पांडव हैं, प्रहलाद महाराज हैं, या जितने भी कैरेक्टर हैं श्रीमद् भागवत में, हर कोई जो है अपने दुख की स्थिति में क्या करते हैं, हमेशा जो है भगवान की शरण लेते हैं, हमेशा भगवान के शरण में जाते हैं। तो अब ये प्रश्न उठता है कि भक्तों के जीवन में कष्ट क्यों आता है, आता ही क्यों है, ठीक है नहीं। जैसे शिला रूप गोस्वामी ने भक्ति रसामृत सिंधु में भक्ति के लक्षण का वर्णन किया है, तो भक्ति करने का वो छह लक्षण बताते हैं। इसमें जो सबसे पहला लक्षण है वो क्या है, क्लेशाग्नि, कि भक्ति करते ही जितने भी क्लेश हैं उसका नाश हो जाता है, खत्म हो जाता है, ये भक्ति शुरुआत करने का परिणाम है। तो फिर हम क्यों देखते हैं कि भक्तों के जीवन में इतना कष्ट आता है, तो वास्तव में जब भी हम भक्ति शुरू करते हैं तो क्या होता है कि हमारा जो कर्मों का अकाउंट है वो किसके हाथ में चला जाता है, स्वयं भगवान श्री कृष्ण के हाथ में, और भगवान जो है हमारे जो भी कर्मों के रिएक्शन है, जो भी हमारे पापों का रिएक्शन है, भगवान जो है उसको हैंडल करते हैं, और भगवान उसको इस तरह से यूज करते हैं हमारे ऊपर ताकि जो है हम भक्ति में भी प्रगति करें और उस साथ साथ जो है उस कर्मों का रिएक्शन भी मिले। तो ये वास्तव में जो है अगर भक्तों को कोई कष्ट मिलता है तो उसको वो कार्मिक रिएक्शन के कारण नहीं मिलता है, किस लिए मिलता है, भगवान के द्वारा दिया जाता है। और भगवान के द्वारा क्यों दिया जाता है, क्योंकि कई बार हम भक्ति में आ भी जाते हैं तो भी हम देखते हैं कि भक्ति करने के साथ साथ भी हमारी बहुत सारी एंजॉयमेंटलिटी होती है, इन तृप्ति की इच्छा होती है, तो भगवान क्या चाहते हैं कि बिल्कुल जो है हम इस भावनाओं से बिल्कुल मुक्त हो जाए और भगवान की जो है शुद्ध भक्ति करें, इसलिए हमें शुद्ध करने के लिए भगवान जो है हमें कष्ट में डालते हैं। ये एक कारण है कष्ट में डालने का। और दूसरा कारण क्या है, अपराध, जब हम अपराध करते हैं तब जो है हमें इस कष्टों का सामना करना पड़ता है। और अपराध कैसे होता है, ऐसा बताया जाता है कि जितने भी आध्यात्मिक चीज़ें हैं उनको जो है अगर हम साधारण समझने लगते हैं, जैसे ये भगवान के विग्रह हैं तो कुछ दिनों में हम इनको साधारण समझते हैं, गुरु को साधारण समझते हैं, वैष्णव को साधारण समझते हैं, हरिनाम जप करते करते इसको भी साधारण समझने लग जाते हैं। इस तरह से जितने भी ये आध्यात्मिक चीज़ें हैं इनको अगर हम साधारण समझते हैं तो फिर क्या होता है, अपराध शुरू हो जाता है, और फिर जो है इन अपराध के कारण जो है फिर हमें इन कष्टों का सामना करना पड़ता है। तो बेसिकली ये दो रीजन बताया जाता है कि भक्तों के जीवन में क्यों कष्ट आता है। तो अब प्रश्न उठता है कि चलो ठीक है, ये इससे जो है भक्तों को कष्ट मिलता है, लेकिन कई बार हम देखते हैं कि शुद्ध भक्त के जीवन में भी इतना सारा कष्ट होता है, तो उनको क्यों कष्ट मिलता है, वो अपराध करते हैं इसलिए या सेंस ग्रेटिफिकेशन इच्छा है, शुद्ध भक्त के साथ तो ऐसा नहीं है, तो उनको भगवान जो है क्यों कष्ट देते हैं, तो उनके लिए जो है तीन कारण बताए जाते हैं। पहला क्या है कि भगवान जो है एक एग्जाम्पल सेट करते हैं। क्या एग्जाम्पल सेट करते हैं कि अगर भक्तों के जीवन में इतना कष्ट आने पर भी भक्त जो है अपने भक्ति से च्युत नहीं होता, यानी कि वो किसी भी स्थिति में भगवान की भक्ति को नहीं छोड़ता, तो ये एक कारण है। दूसरा कारण क्या है कि भगवान जो है भक्त का भक्त को ग्लोरीफाई करना चाहते हैं, उनका गुणगान करना चाहते हैं कि चाहे कैसी भी स्थिति हो भगवान जो है, जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं कि बलि महाराज भगवान की सेवा में बिल्कुल फिक्स हैं, चाहे कैसी भी स्थिति हो भगवान जो है भक्त जो है जो शुद्ध भक्त होते हैं वो इस भौतिक संसार से विचलित नहीं होते हैं, हमेशा भगवान की सेवा में लगे रहते हैं। और इसके बाद जो है ये दो कारण, और तीसरा कारण इसमें बताते हैं कि वास्तव में जो शुद्ध भक्त होते हैं वो देखने में लगता है कि उनके ऊपर जो है कष्ट है, पर वास्तव में वो हो सकता है कि उनको कुछ इनकन्वीनियंस हो, कुछ कठिनाई हो, लेकिन वास्तव में वो कष्ट का सामना नहीं करते हैं। जैसे कि हम देखते हैं जैसे जितने भी ब्रजवासी थे, पांडव थे, प्रहलाद महाराज थे, ये लोग शुद्ध भक्त हैं, नित्य सिद्ध नित्य परिकर हैं भगवान के, देखने में लगता है कि इनके ऊपर कष्ट है लेकिन ये वास्तव में हर स्थिति में भगवान का स्मरण कर रहे होते हैं। जैसे श्रील प्रभुपाद जी थे, प्रभुपाद जी का जब लास्ट में शरीर जो है इतना अस्वस्थ हो गया तो जब एक डॉक्टर उनसे मिलने आए तो जब उन्होंने प्रभुपाद जी को देखा तो प्रभुपाद डॉक्टर से पूछते थे कि हाउ आर यू, तो डॉक्टर जो है उनकी आंखों में आंसू आ गया। डॉक्टर ने बताया कि जो प्रभुपाद जी की जो स्थिति है अगर कोई आम आदमी की हो तो व्यक्ति पीड़ा में जो है एकदम चिल्लाएगा, लेकिन ये व्यक्ति जो है मेरे से पूछ रहे हैं कि आप कैसे हो। जैसे अभी देखते हैं जो हमारे वर्तमान आचार्य हैं शिला जयपताका स्वामी महाराज, महाराज की फिजिकल देखा जाए बॉडी तो क्या स्थिति है, लेकिन फिर भी आप देखेंगे महाराज कितने उत्साहपूर्वक पूरे जो है वर्ल्ड में ट्रैवल करते हैं, प्रचार करते हैं इस तरह से। तो देखने में लगता है जो शुद्ध भक्त का जो है वो कठिनाई है, लेकिन वास्तव में जो है वो हर स्थिति में जो है भगवान का स्मरण कर रहे होते हैं। तो ये जो है भक्तों को कष्ट में डालने के पीछे ये विचार है। और उसके बाद तात्पर्य में प्रभुपाद जी आगे लिखते हैं, संकट में हर व्यक्ति शोक करता है और दुखी होता है, किंतु भक्त भगवत कृपा से बुरी से बुरी स्थिति में भी यह समझ सकता है कि भगवान उनकी कठिन परीक्षा ले रहे हैं। लेकिन इन चीज़ों को समझना इतना आसान नहीं है, है कि नहीं? अगर किसी भी भक्त के जीवन में कठिनाई आती है तो हम उसको जो है भगवान की कृपा समझकर उसको स्वीकार करें और भक्ति में आगे बढ़ें। ये सुनने में बोलने में तो अच्छा लगता है लेकिन जब कठिनाई का सामना करना पड़ता है तो ये सब सिद्धांत जो है हम भूल जाते हैं। यही लिख रहे हैं प्रभुपाद जी कि संकट में हर व्यक्ति शोक करता है। जब भी हमारे जीवन में संकट आता है तो क्या करते हैं, हम शोक करते हैं और जो है शोक करते हैं, दूसरों को ब्लेम करते हैं, भगवान को ब्लेम करते हैं, परिस्थिति को ब्लेम करते हैं, लेकिन इसको जो है भगवान की कृपा नहीं समझते। लेकिन अगर जीवन में कुछ अच्छा चल रहा हो तो उसको तो हम सोचते हैं कि ये भगवान की कृपा है, लेकिन जब कुछ बुरा घटना घटता है फिर हम उसको भगवान की कृपा नहीं समझते। तो इसी तरह का एक प्रसंग है श्रीमद् भागवतम के छठे स्कंद में राजा चित्रकेतु का। तो इस प्रसंग से हम समझेंगे कि किस तरह से जो एक बद्ध जीव होते हैं, जो एक जीवात्मा होता है, जब वो उसके जीवन में कठिनाई आता है तो भगवान को किस तरह से ब्लेम करता है। जैसे हम जानते हैं कि महाराजा चित्रकेतु जो है पूरे पृथ्वी का राजा थे वो, और उनके पास ऐसा बताया गया है कि जो चित्रकेतु महाराज हैं उनके पास हर तरह का ऐश्वर्य था उनके जीवन में, और लेकिन वो फिर भी क्या थे, बहुत दुखी थे। क्यों? क्योंकि उनका कोई भी पुत्र नहीं था। इतना कुछ होने के बाद भी उनकी जो वन मिलियन उनकी जो रानियां थी उसके बाद भी किसी भी रानी से उनके जो एक भी संतान नहीं था। तो महाराजा चित्रकेतु जो है इतना जीवन में सब कुछ होने के बाद भी बहुत दुखी थे। तो एक बार जब उनके दरबार में जब एक बार अंगिरा मुनि आते हैं और जब वो देखते हैं महाराजा चित्रकेतु को तो वो समझ जाते हैं कि ये जो है चित्रकेतु महाराज दुखी हैं। तो फिर वो महाराजा चित्रकेतु से उनके दुख का कारण पूछते हैं। फिर चित्रकेतु महाराज बताते हैं कि किस तरह से उनके जीवन में कोई संतान नहीं है तो इससे जो है वो काफ़ी दुखी हैं। तो फिर जो है अंगिरा मुनि जो है उनको, और फिर वो चित्रकेतु महाराज अंगिरा मुनि से आशीर्वाद की याचना करते हैं कि आप कृपा करके मेरे ऊपर कृपा करें ताकि मेरा जो है कोई पुत्र हो। फिर अंगिरा मुनि जो है उनको आशीर्वाद देते हैं और उनको एक पुत्र होता है जिसका क्या नाम था, हर्ष और शोक। तो अंगिरा मुनि ने बोला था, जब उनको पहले अंगिरा मुनि ने क्या बोला, हर्ष और फिर शोक, तो उसी तो इसका क्या मतलब है कि ये जो पुत्र है आपके सबसे पहले सुख का कारण बनेगा और उसके बाद दुख का। तो उन्होंने उसी समय बोल दिया था, लेकिन फिर भी जो है चित्रकेतु महाराज जो है अपने उनकी जो सबसे बड़ी जो रानियां थी कीर्ति द्वीति, उससे जो है एक पुत्र की प्राप्ति होती है जिनका नाम उन्होंने जो है हर्षोक रखा। तो पूरे दरबार में जितने भी लोग थे उस पूरे साम्राज्य में हर कोई खुश हो गए कि जो है चित्रकेतु महाराज को पुत्र हुआ है। लेकिन पूरे जगत में हर कोई खुश था, लेकिन कौन खुश नहीं था, उनकी जितनी भी रानियां थी, सिर्फ जो जैसे कि उनकी 1 मिलियन रानियां हैं, तो जिन रानियों से उनके पुत्र हुए उसके अलावा जितनी भी रानी थी वो सब जो है दुखी थे, उसके अलावा हर कोई खुश था। उनको लग रहा था कि जो है जो इनकी सबसे बड़ी पत्नी है इससे जो इनको पुत्र हुआ है, तो चित्रकेतु महाराज जो है स्वाभाविक रूप से जो है उन अपने पत्नी के प्रति जो है काफ़ी असनेह शो करते थे और बाकी पत्नियां जो है वो काफ़ी इंसल्टेड फील करती थी। तो वो सब दुखी थी और उन्होंने अंत में क्या किया, उन्होंने एक प्लान बनाया जिससे उन सब रानियों ने मिलकर उस बच्चे को क्या किया, विष दे दिया। और वो विष ऐसा था कि जब उन्होंने बच्चे ने उस विष का पान किया तो उस उनके पूरे बॉडी में कोई इसका कोई बोल नहीं सकता कि ये बच्चे जो है विष के द्वारा इसने शरीर छोड़ा है, उस तरह से ऐसा विष था वो, उसका कोई भी जो है आप उसका सुराग पता नहीं कर सकते कि किस कारण से इस बच्चे की जो है मृत्यु हुई है। उस समय भी जो इतनी टेक्नोलॉजी एडवांस थी हम देख सकते हैं। तो उसके बाद जो है फिर जब उस पुत्र का निधन हो गया तो महाराजा चित्रकेतु, उनकी रानियाँ, सभी लोग जो है पूरे राज्य में जितने भी लोग थे सभी शोक करने लग गए। और शोक करने के बाद उसके बाद जो उनकी बड़ी रानियाँ थी जिनके पुत्र थे कीर्तिदूती, वो जो है भगवान को कुछ बोलते हैं। तो ये यहाँ पे ये श्री भागवतम 6ठे स्कंद के 14 अध्याय का ये 54 नंबर श्लोक है, ये श्लोक सुनिए। इसमें कह रहे हैं कि अहो विधादत अस्तत इव बालिशो यस्तात्मम श्रीचस्य प्रतिरूपम इह से परेनु जीवत्य परस्य या मृति विप्रस्य चेत्वम असि ध्रुवः परः। इसका अनुवाद इस प्रकार है, ये हे विधाता, हे सृष्टिकर्ता, तू निश्चय ही अपने सृष्टि कार्य में अनुभवहीन है। तो वो क्या कह रहे हैं भगवान को कि यहाँ पे शब्द आया है बालिशो, कि आप क्या हो, अनुभवहीन हो, आपको जो है बिल्कुल भी अनुभव नहीं है। किस चीज़ का अनुभव नहीं है, आपने सृष्टि का निर्माण किया है, सब कुछ किया है, लेकिन फिर भी आपको जो है कोई भी अनुभव नहीं है। क्यों अनुभव नहीं है, क्योंकि पिता के रहते हुए तूने उसके पुत्र की मृत्यु होने दी और इस तरह से अपनी ही सृष्टि के नियमों के विपरीत कार्य किया है। ऐसा देखा जाता है कि जनरली जो है पिता के सामने जो है पुत्र की मृत्यु नहीं होती है, पहले पिता शरीर छोड़ते हैं और उसके बाद पुत्र। और पहले तो खास करके आजकल तो ऐसा देखा नहीं जाता है, कोई व्यक्ति कभी भी शरीर छोड़ता है, लेकिन पहले जो है ऐसा था कि जनरली जो पुत्र है वो मतलब जो है पिताजी के बाद ही शरीर छोड़ता था। तो यहाँ पर वो कह रहे हैं कि ऐसे कैसे हो गया, ये जो मेरा पुत्र है अभी जो है उसका जो पिता है वो जिंदा है और आपने जो है पहले पुत्र को ही हर लिया, तो ये आपने सृष्टि बनाया, लेकिन वास्तव में आपको जो है सृष्टि कैसे चलाना है इसका कोई भी ज्ञान नहीं है। अगर मान लो कोई पिता है वो वृद्ध हो जाए, है कि नहीं, तो उसका कौन देखभाल करेगा, पुत्री देखभाल करता है, और आपने पुत्र को हर लिया, ऐसी कैसी ये आपने सृष्टि बनाई है। तो इस तरह से जो है वो भगवान के ऊपर जो है वो दोष लगा रही है और भगवान को कह रहे हैं कि आप जो है बिल्कुल अज्ञानी हो, आप जो है बिल्कुल अनुभवहीन हो, आपको बिल्कुल भी नहीं पता कि सृष्टि कैसे चलता है। तो ये वास्तव में ये कोई करुणा नहीं है, ये आप जीवों के ऊपर करुणा नहीं कर रहे, इस तरह से जो है वो भगवान के ऊपर ब्लेम कर रही है। और प्रभात जी लिखते हैं तात्पर्य में, जब बद्ध जीव की पराजय होती है तो वह इसी प्रकार से विधाता को धिक्कारता है। ये तरीका है भगवान को ब्लेम करने का, जब भी किसी जीवों के ऊपर कष्ट आता है तो इस तरह से जो है वो भगवान को जो है भगवान के ऊपर ही ब्लेम करता है। लेकिन वास्तव में देखा जाए कि भगवान ने ऐसा कहीं भी नहीं बताया, किसी भी शास्त्रों में नहीं बताया है कि पहले किसकी मृत्यु होगी, पहले पिता की मृत्यु होगी, पहले पुत्र की मृत्यु होगी, ऐसा कहीं भी नहीं लिखा। लेकिन हम सोचते हैं कि ऐसा ही होना चाहिए। जैसे कि मान लिया अगर कोई, जैसे कि गवर्नमेंट है वो कोई ट्रैफिक रूल बनाता है कि नहीं, और कोई व्यक्ति जो है रोड के ऊपर अगर किसी का एक्सीडेंट हो जाए तो हम ये नहीं कह सकते कि जो है जिन्होंने ये ट्रैफिक रूल बनाया उसकी गलती है कि नहीं। ऐसा सिर्फ मेरे फैमिली के साथ ही क्यों हुआ, इसी के एक्सीडेंट क्यों हुआ और दूसरे का क्यों नहीं हुआ, है कि नहीं। तो उसी तरह से अगर हम सड़कों के ऊपर सावधान नहीं हैं, हम ट्रैफिक रूल का पालन नहीं कर रहे हैं तो हमारा एक्सीडेंट होगा। तो उसके लिए जो जिसने ये नियम बनाया है उसको हम ब्लेम नहीं कर सकते। भगवान ने सृष्टि बनाया है, भगवान ने बोला कि जितने भी जीव हैं अपने कर्मों के हिसाब से आते हैं और अपने कर्मों के हिसाब से शरीर छोड़ते हैं। तो जो भी सृष्टि करता है हम उनको ब्लेम नहीं कर सकते कि आप ऐसे कैसे पिता से पहले पुत्र की मृत्यु होगी या फिर पुत्र से के सामने पिता की मृत्यु होगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो प्रभा जी तात्पर्य में यही कह रहे हैं कि वास्तव में जो जीव है, जीवात्मा है, वो अज्ञानी है। वास्तव में हम जो है, हमें हम अनुभवहीन हैं और इसलिए जो है हम भगवान को ब्लेम करते हैं कि हमारे जीवन में इतना कष्ट क्यों। इतना ही नहीं, ये कीर्ति द्वितीय अगले श्लोक में कुछ और भी भगवान को कह रही है। ये क्या कह रही कि यदि कर्म के द्वारा तेरे बनाए हुए असनेह बंधन, हाँ हे ईश्वर, आप यह कह सकते हैं कि ऐसा कोई नियम नहीं है कि पुत्र के जीवन काल में ही पिता की मृत्यु हो और पिता के जीवन काल में ही पुत्र उत्पन्न हो, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति अपने कर्मों के अनुसार जीता और मरता है। फिर भी यदि कर्म इतना प्रबल है कि जन्म तथा मृत्यु उसी पर निर्भर करते हो तो फिर नियंता या ईश्वर की आवश्यकता ही नहीं है। वो कह रही है कि मान लो कि अगर कोई जीवात्मा है अपने कर्मों के हिसाब से आता है, अपने कर्मों के हिसाब से आता है जाता है, तो फिर इसमें आपका क्या रोल है, इसमें फिर हम भगवान को क्यों पूजा करें। जो भी जीव है अपने हिसाब से आता है, अपने हिसाब से जाता है। तो वास्तव में ये जो सिद्धांत वो बता रही है, ये कौन सा सिद्धांत है, ये कर्म मीमांसा है। कर्म मीमांसा सिद्धांत क्या है कि जो भी हम कर्म करेंगे उसका फल मिलेगा, लेकिन भक्ति में ऐसा नहीं है। तो वो इस तरह से भगवान को कह रही है कि अगर कर्मों के कर्म ही सब कुछ है तो फिर आपकी क्या आवश्यकता है, अगर आप कुछ कर ही नहीं सकते तो हम आपकी पूजा क्यों करें। फिर तो ठीक है, हर जितने भी जीव है संसार में अपने कर्म से आते हैं, अपने कर्म से शरीर छोड़ते हैं। उसके बाद कह रहे हैं कि चलो ठीक है, आप बोलते हो कि कर्म को के ऊपर भी, कर्म का जो चक्र है उसको भी देखने के लिए कोई एक नियंता चाहिए। तो हम मानते हैं कि आप इन कर्म को देखने के लिए, आप इसके ऊपर, आप जो है आपके नियंत्रण में ये जो है भौतिक प्रवृत्ति, ये जो कर्मों का बंधन है वो कार्य कर रही है। तो लेकिन आप ये बताओ कि अगर किसी का भी पुत्र होता है तो कोई भी व्यक्ति, आप देखते हैं नेचुरल है, किसी भी माता के लिए, पिता के लिए अपने पुत्र को बहुत ही स्नेह से उसका जो है पालन पोषण करता है। तो ये स्नेह कहाँ से आया, ये तो आपने ही दिया है कि नहीं, आपके द्वारा दिया गया स्नेह है, इसलिए तो हम अपने बच्चे को पालते हैं। नहीं तो अगर हमें ये पता चले कि इसका तो कोई भरोसा ही नहीं है, कभी भी शरीर छोड़ सकता है, तो हम इस बच्चे को क्यों पालेंगे। और ये जो स्नेह है ये भी आपके द्वारा दिया गया है। तो इस तरह से जो है वो भगवान के ऊपर जो है अलग अलग तरह का जो है वो ब्लेम करती है। लेकिन वास्तव में जैसे कि ब्रह्म संहिता में कहा गया है कि जितने भी कर्म है हमारे, भगवद्गीता में बताया गया, अगर हम भगवान के पूर्ण रूप से शरण लेते हैं तो जितने भी कर्म है कर्म के बंधन से जो है हम मुक्त हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पे देखने में लगता है कि किस तरह से ये अलग अलग लॉजिक और आर्गुमेंट से जो है भगवान के ऊपर ब्लेम कर रही है। तो ये वास्तव में जो है एक जो बद्ध जीव है उसका लक्षण है कि उसके जीवन में अगर कोई भी कष्ट आता है तो हमेशा हर स्थिति में भगवान को ब्लेम करेगा। और उसके बाद हम देखते हैं कि लेकिन वास्तव में भक्तों को कैसा, उसका जो है कैसा एटीट्यूड होना चाहिए। तो श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद के 14वें अध्याय में बहुत ही प्रसिद्ध श्लोक है जिसमें हम जानते हैं कि ब्रह्मा जी जो है भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि चाहे जैसी भी भक्त, अगर किसी भी कष्ट में भक्त को अगर कष्टों का सामना करना पड़ता है तो उसको जो है, जो उनको जो है इसको जो है भगवान की कृपा समझना चाहिए और जो है भगवान की कृपा का प्रतीक्षा करना चाहिए और इस तरह से जो है हम भगवान का शरण ले सकते हैं। अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो क्या करेंगे, जितने भी परिस्थिति है दूसरों के ऊपर, भगवान के ऊपर ब्लेम करेंगे तो उससे जो है हमारा कुछ भी लाभ नहीं होगा। लेकिन अगर हम इन परिस्थितियों को भगवान की कृपा समझेंगे, कृपा समझकर इसको एक्सेप्ट करेंगे, तो आप देखेंगे कि हमारे जीवन में बहुत ही अलग अलग साक्षात्कार होंगे और तब जो है हम जो है वास्तव में भक्ति में प्रगति कर सकते हैं। और जैसे कि यहाँ पर प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिख रहे हैं कि जितने भी लोग भक्ति में जुड़े हैं, भगवान यहाँ पर बलि महाराज का क्या कर रहे हैं, उनकी परीक्षा ले रहे हैं। तो हम सब भक्ति में हैं, हम सब की जो है भगवान जो है इन अलग अलग कष्टों में डालकर, इन अलग अलग परिस्थितियों में डालकर भगवान क्या कर रहे हैं, हमारी परीक्षा ले रहे हैं। तो हम सबको जो है इस परीक्षा में जो है इन परीक्षाओं का सामना करना पड़ेगा। जैसे हम देखते हैं भौतिक संसार में भी, अगर किसी को भी कहीं भी अगर कोई भी बड़ी इंजीनियरिंग कॉलेज हो, IIT हो, IIM हो, कहीं भी हर जगह हम देखते हैं क्या होता है, उसका एंट्रेंस होता है, उसका परीक्षा होता है, और उस व्यक्ति को जो है उसका उस परीक्षा में पास करना होता है। लेकिन जैसे कोई अगर कोई स्टूडेंट हो, अगर वो सोचे कि नहीं मैं ऐसी तरह जो है घूमते क्रिकेट देखते हुए फिल्म देखते हुए ऐसे जो है परीक्षा में पास हो जाऊंगा, तो ये संभव नहीं है। उनको जो है क्या करना पड़ेगा, वास्तव में इस परीक्षा में पास होने के लिए उनको जो है स्टडी करनी भी पढ़नी पड़ेगी। उसी तरह से हम सबको जो है, हमारे सबका क्या लक्ष्य है, इस भौतिक जगत से जो है परे भगवान के धाम में जाना। तो क्या कोई जीवात्मा जो है कोई क्या हम इतना आसानी से भगवान के धाम में जा सकते हैं? नहीं, हमारा इतना ऊंचा लक्ष्य है तो हमारा उतनी कड़ी परीक्षा भी होगी। ये जो बोलते हैं ना, डेथ इज द फाइनल एग्जामिनेशन, ये जो मृत्यु की परीक्षा है वो सबसे कड़ी परीक्षा है और सबसे अंतिम परीक्षा है। और इस परीक्षा में जो है हम हर किसी को जो है इस परीक्षा का सामना करना पड़ेगा, और हर किसी को इस परीक्षा में पास होना है ताकि जो है हम भगवान के पास जा सके और भगवान का जो है शरण ले सके। तो वास्तव में हम आज के इस श्लोक से ये हम शिक्षा ग्रहण करते हैं कि चाहे भक्तों के जीवन में जो भी कष्ट होता है वो भगवान के ही द्वारा दिया जाता है, ताकि जो है भगवान चाहते हैं कि उस भक्त जो है पूर्ण रूप से उसका शुद्धिकरण हो और शुद्धिकरण के माध्यम से भक्ति में प्रगति करें। और उसके बाद भक्तों का क्या भाव होना चाहिए कि हमारे जीवन में जो भी कष्ट आता है उसे जो है हमें भगवान की कृपा समझकर स्वीकार करना चाहिए, और किसी भी स्थिति में जो है इस चीज़ से विचलित नहीं होना चाहिए, हमेशा भक्ति के पथ पर लगे रहना चाहिए, भगवान की सेवा में लगे रहना चाहिए। इससे जो है हम अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। हरे कृष्ण। तो आपसे भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। किसी का कोई प्रश्न हो, कमेंट हो, तो पूछ सकते हैं। इनका प्रश्न है कि अगर भक्तों के जीवन में कष्ट आता है तो उन कष्टों से बचने का प्रयास नहीं करना चाहिए। देखिए, जैसे भौतिक जगत है, जीवन है, इसमें तो कष्ट आना नेचुरली है कि नहीं? ये तीन तरह के ताप है कि नहीं, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, ये इतने तरह के क्लेश हैं, ये तो नेचुरली है, भौतिक जीवन का प्रकृति है कि हमें जो है कष्टों का सामना करना पड़ेगा। तो कष्टों से सामना करने का क्या मतलब है? हमें जो है हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि इससे जो है हमें, ऑफकोर्स ऐसा नहीं, अगर हमें बीमारी लगता है तो हमें डॉक्टर के पास जाना चाहिए, या कोई भी जीवन में समस्या आती है तो उसका हल करना चाहिए। लेकिन वास्तव में इस चीज़ का पूरा ज्ञान होना चाहिए कि वास्तव में जो ये कष्ट है वो तो लगे ही रहेंगे, लेकिन हमें जो क्या करना है, इन परिस्थिति से विचलित नहीं होना है। अगर हमें कोई बीमारी लग गई, कोई ठीक नहीं हो रहा है, तो हमने क्या किया, भक्ति छोड़ दिया है कि नहीं, माला करना हमने बंद कर दिया? नहीं, ये चीज़ हो रहा है, हमें उसके उपचार का प्रावधान करना चाहिए, लेकिन किसी भी स्थिति में अपने भक्ति को नहीं छोड़ना चाहिए। ये कहने का विचार है। क्या क्या? हाँ, ये वही चित्र के तुम। हाँ जी, हाँ जी, ठीक। तो आपसे भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की, श्रील प्रभुपाद की, श्री राधा रघुवन भगवान की, श्री कृष्ण बलराम की, नीताजी गौर प्रेमानंद की।